एक सवाल है, आमीन की तकरीब करना कैसा है? ये जब बच्चा कुछ पढ़ता है और कायदा ख़त्म कर लिया उसने, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, एक चीज़ ख़त्म की है, उस पर दुआ, उस पर हम दावत कर दें। कुरान नाज़रा ख़त्म किया, हिफ्ज़ ख़त्म किया, उसकी दावत कर दें। तो कोई दीनी खुशी का मौका हो, उस मौके पर दावत कर देने में तो कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि अच्छी बात भी है। लोग दुनियावी चीज़ों पर खुशी मनाते हैं, हम दीनी चीज़ों पर खुशी मनाएं। दीनी चीज़ें, कुरान का हिफ्ज़ किया, कुरान मुकम्मल किया, या कोई और दीनी कोई तालीम उसने हासिल की, एक दीनी चीज़ पर खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एतिदाल का ख्याल रखना है। मैं उसके लिए हमारे हज़रत मौलाना यूसुफ़ मुताला रहमतुल्लाही अलैह की एक बात नकल करता हूँ, जिससे शायद बात समझ में आ जाए। कि उन्होंने, अब वो क्या वाक़या था, किसके साथ आया था, उसकी तफसील को मैं छोड़ता हूँ, कि बहरहाल वाक़या ये था कि किसी बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो उनके वालिद ने ये कहा कि मैं दावत कर दूं बच्चों की हिफ्ज़ की तकमील पर। तो उनका जो जवाब था, उसका हासिल ये है कि अच्छी बात है वैसे तो, कि आप, ज़ाहिर है मैं खुलासा बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ, कि आप खिलाएंगे, सवाब का काम है, लेकिन दूसरे बहुत से ऐसे हैं बच्चे जिनके वालिदैन खिला नहीं सकते, उनमें इतनी इस्तेआत नहीं है, या लोगों के पास अभी तंगी है, लोगों में इस्तेआत नहीं है कि वो ये काम कर सकें। अब एक बच्चे के लिए अगर उसके वालिद दावत करते हैं, तो दूसरे बच्चे भी अपने वालिद से यही कहेंगे कि अच्छा, उसके उसमें उसके हिफ्ज़ ख़त्म हुआ था तो उसने ये दावत की थी, मुझे भी करनी है। और आगे वाला बच्चा ये कहेगा नहीं, मुझे उससे ज़रा बढ़कर करनी है, या कम अज़ कम उसके बराबर करनी है। बच्चे अगर वालिदैन कर सकेंगे, वालिदैन अगर कर सकेंगे, तो तब भी एक तरह से तकाबुल की शक्ल बनती है, और ठीक भी है। चलो कोई हरज नहीं कि चलो तकाबुल ना हो, बस वैसे ही खुशी का इजहार हो। तो अगर वालिदैन नहीं कर सके, नहीं किया, मना कर दिया, तो फिर बच्चों को ये रहेगा, देखो फलाने वालिदैन ने, उनके वालिदैन ने तो किया, और हमारे वालिदैन ने हमारे लिए इतना भी नहीं किया, इतनी बड़ी खुशी के मौके पर इतना भी नहीं कर सके। तो ये एक शिकायत रह जाती है, अफसोस रह जाता है। तो हमें किसी भी अमल में इसका ख्याल रखना है कि हम एक अच्छी चीज़ करने जाएँ, ऐसा तो नहीं है कि उस हमारे ये अमल किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। बस इसका ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई जायज़ अमल किसी की तकलीफ़ का बायस बन जाए। इसका ख्याल रखते हुए हमें इन चीज़ों का फ़ैसला करना होगा। एक और सवाल है, सवाल ये है कि आजकल जो फितनों का दौर है, उसमें बेहतर सूरत क्या है बच्चियों के सिलसिले में, उनकी तालीम के सिलसिले में, कि क्या उनको बुनियादी दीनी तालीम देने के बाद कॉलेज वगैरह भेज दें, या सिर्फ़ दीनी तालीम में उनको लगाएं? तालीम तो एक ज़रूरी चीज़ है, उसके बग़ैर तो ज़ाहिर है, हमने हालात अगर हम देखें, तारीख़ देखें, जहाँ पर सही दीनी तालीम नहीं होती, तो उसकी वजह से, जहालत की वजह से कितने फितने पैदा होते हैं, कितनी गलत चीज़ें दीन में शामिल होने लगती हैं, और क्या क्या उसकी वजह से मफासिद होते हैं। तालीम तो ज़रूरी है, तो सब मानते हैं, ज़ाहिर है। उस तालीम के लिए जो बेहतर से बेहतर सूरत इंसान इख्तियार कर सके दीनी माहौल में रहते हुए, और ख़ास तौर पे बच्चियों के सिलसिले में। बाज़ लोग समझते हैं कि बच्चियों को दीनी तालीम देना दिलवाना, ये हमारे लोगों में बुरा समझा जाता है। नहीं, बुरा नहीं समझा जाता, हाँ उसको मिसाल दलील भी देते हैं, दलील ये होती है, ये बाज़ लोगों का ख्याल होता है शायद, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो ख्याल, ताकि अगर किसी के जहन में हो तो साफ़ हो जाए, कि देखो लड़कों के इतने मदारिस और लड़कियों के कम थे पहले ज़माने में, फिर बाद में कुछ हुए, तब भी अभी भी लड़कियों के मदारिस कम हैं, हालांकि उनकी तादाद ज़्यादा है। ये ख्याल रखने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतों के लिए तालीम की अहमियत थी और दी जाती थी, लेकिन औरतों की तालीम के लिए वो तरीक़ा नहीं था जो मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए مسجد کے پیچھے جگہ تھی، اصحاب صفہ وہاں رہتے تھے، وہ اس زمانے کے ایک طرح سے بورڈنگ مدرسہ تھا، لیکن عورتوں کے لیے ایسا نظم نہیں تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے۔ عورتوں کے لیے قرن فی بیوتکن، گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر، کسی ایک گھر میں کوئی خاتون پڑھاتی ہیں ان کے پاس جا کر پڑھ لیا، پڑھنے کا سلسلہ گھروں میں آپس میں رہے، مائیں سیکھیں اور مائیں سیکھ کر گھر میں بچیوں کو سکھائیں اور گھر میں تعلیم کا سلسلہ رہے، باقاعدہ اس کے لیے ایک جگہ مقرر کرنا، ہاں ایک مجبوری ہے، جن جگہوں پر وہ ماحول نہیں بنتا، والدین وہ انتظام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے مدرسے کیا نظم بھی ہے، اور وہ نہ ہو تو اچھا پھر ٹھیک ہے، یعنی اس سے بہتر صورت یہ ہوتی کہ گھروں میں رہتے ہوئے دینی تعلیم اچھے ماحول میں والدین کی نگرانی میں رہتے ہوئے اگر وہ تعلیم ہوتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ میں عام حالات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ اور پھر مزید یہ کہ اگر ہم کالج بھیج رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے لڑکوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنے کی جگہ ہے، اور لڑکیوں کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور فتنے کی جگہ ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے اولاد ہیں جو دین سے محروم ہو گئے، ایمان سے محروم ہو گئے۔ میں نہیں کہہ رہا سب کا، سب کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سے وہاں پر تو ایسے دیندار ہوتے ہیں جو عام یعنی دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی ایسے نہیں بنتے، تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کبھی زندہ سے مردہ، کبھی مردہ سے زندہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح کبھی دینی اداروں سے بے دین قسم کے لوگ بیچارے نکل آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں، اور کبھی ان کالجوں میں پڑھنے والے انتہائی دیندار اور دین کی خدمت کرنے والے بن جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ان بعض واقعات کو دیکھ کر ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ نہیں ہماری اولاد بھی بچ جائے گی۔ ہم دیکھیں گے اکثر کے اعتبار سے وہاں جانے میں انسان کے اعمال میں تو خطرہ ہوتا ہی ہے اور ایمان پر بھی خطرہ ہوتا ہے، لوگوں کو غلط شبہات ذہن میں آنے لگتے ہیں، ایمان سے دوری ہونے لگتی ہے، اور یہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں جہاں پر گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے، وہاں پر بھی ان کے گھروں میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کی تو بہرحال کوشش کی جائے کہ اس ماحول سے بچایا جائے، خاص طور پہ اگر آگے جا کر ان کو نہ مردوں کو تو پھر بھی اچھا معاش کے سلسلے میں محنت وغیرہ کرنی ہوتی ہے، اگر بچیوں کو وہ بھی نہیں کرنا، صرف پڑھ لینا ہے، تعلیم حاصل کر لینا ہے اور آگے جا کر پھر اگر اس فیلڈ میں لگنا نہیں، کام کرنا نہیں ہے، تو خامخواہ ان کو اس مشقت میں اور اس فتنے والی جگہ میں کیوں ڈالا جائے۔ اس کے بجائے دینی تعلیم ہو تو دینی تعلیم حاصل کریں، گھروں میں اپنے بچوں کو وہ بعد میں دینی تعلیم دے سکیں، ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے یہ بہتر صورت معلوم ہوتی ہے۔ سوال ہے، کسی نے زکوٰۃ نکالی، ایگزیکٹ اماؤنٹ جو دینا ہے اس کو فوراً کیلکولیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا، انہوں نے نیت کی کہ یہ اماؤنٹ جو میں نے دیا ہے اس سال کے لیے ہیں، اور اگر کچھ ایکسٹرا ہیں وہ دوسرے سال کے لیے، پھر زکوٰۃ بعد میں کیلکولیٹ کرنے کے بعد معلوم کرے کہ وہ زیادہ یا کم۔ بہرحال سوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ اندازے سے نکال دی، پھر بعد میں حساب لگایا، حساب لگانے سے معلوم ہوا کہ جتنی زکوٰۃ دی تھی، مثلاً $500 زکوٰۃ میں ادا کیے، حالانکہ اس سال حساب لگانے سے معلوم ہوا کہ اس کے ذمے $400 کی زکوٰۃ لازم تھی، تو $400 زکوٰۃ میں گئے، اور $100 اب اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو آئندہ سال کی جو زکوٰۃ دینی ہے اس میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے، یا صدقے میں چلا گیا، جو نیت کرے اس کے لحاظ سے ہو جائے گا۔ ایک اور سوال ہے، اگر کوئی مسلم گھر کے کام کے لیے آتے ہیں یہ ایک عام ہم لوگوں میں مزاج ہوتا ہے کہ جو سوال میں آیا ہے، اگر یہی مقصد ہے سوال کا، कि कभी हमने कोई घर का वगैरह का कोई काम करवाया और काम करने वाले मुसलमान हों। तो असल बात यह है कि पहले से मामला बिल्कुल साफ तय होना चाहिए कि इतना काम और इतने पैसे, इतना काम और इतने पैसे, ये तय होना चाहिए। हमारे लोगों में एक बड़ी बीमारी यह है कि नहीं, आप अपनी खुशी से जो दे दें, अपनी खुशी से जो भी दे दें। तो अब खुशी से तो जाहिर है, खुशी से दे दो, खुशी से दे दो। खुशी से देने वाला तो हमेशा ये सोचेगा कम दूँ, और लेने वाला हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा लूँ। और हम अगर $1 उनको पकड़ा दें तो खुशी से हम दे रहे हैं, तो वो उस पर कभी खुश नहीं होंगे। तो ये मामला दुरुस्त नहीं है। मामला उनसे ये कहते, देखे शरीयत ये कहती है कि मामला साफ़ हो, तो मामला तय कर लिया जाए, कोई रकम तय कर ली जाए और उतना दे दें। अगर वो ज़ायद मांगते हैं तो वो नाहक़ मांगते हैं, उनको मांगने का हक़ नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। और वो बग़ैर तीबे नफ्स के ज़बरदस्ती अगर वो इसरार करके लेते हैं, तो उनका ये लेना, ये भी उनके लिए ज़ाहिर है उस माल में बरकत नहीं होती, उनको मांगना नहीं चाहिए। और हाँ, इतना है जैसे हम आम अहादीस वगैरह में पढ़ते हैं कि जितना तय किया था थोड़ा सा उससे कुछ ज़ायद भी इंसान दे दे, चाहे पैसों में ज़्यादा दे दे, या मसलन किसी वक्त का खाना खिला दिया, काम ही हमारे पास कर रहे थे, कभी किसी वक्त खाना खिला दिया या कुछ और इंतज़ाम कर दिया, तो इस तरह की कोई ज़ायद चीज़ अपनी तरफ से जितना मुकर्रर था उससे थोड़ा सा कुछ ज़ायद भी हम कर दें, तो एक मुस्तहब अमल है, अच्छी बात है। लेकिन उनका ये मांगना, ये ना हक है, और उस पर देना कोई ज़रूरी नहीं है। एक और सवाल है कि कौन सी अच्छी किताब है जिसमें हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तफसीलात मिलें। इसके लिए तो जहाँ पर किताबें मिलती हैं, हमारे बुक स्टोर वग़ैरह जितने होते हैं इस्लामिक बुक स्टोर, उनसे मालूम कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सी किताब मिल सकती है आसानी से। एक तो बाज़ किताबें हैं जिनमें सहाबियात का ज़िक्र ख़ास तौर पर मिलता है, सहाबियात का ज़िक्र, तो उस अनवान से अलग अलग किताबें हैं, या हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी बाज़ों ने मुस्तक़िल लिखा है। तो इस तरह की किताबें तो बहुत सी हैं, बस ये है कि उनमें से मिलने में कौन सी आसान हैं जो आसानी से सहूलत से मिल सके। अज़वाज मुतहरात पर किताबें लिखी गई हैं, इसी तरह सहाबियात पर किताबें लिखी गई हैं, एक एक सहाबिया पर हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन पर भी रसाइल लिखे हुए हैं। तो असल तो ये देखना है कि कहाँ से किताब मिल सकती है, कोई इस्लामी बुक स्टोर हो तो उनसे मालूम कर ले जाए कि आप लोगों के पास इस मौजू पर कौन सी किताबें हैं, और वहाँ से फिर उनको मंगवाने की जो सहूलत हो सके वो कर ली जाए। सवाल यह है कि ऑनलाइन तालीम, हाँ ऑनलाइन अगर कॉलेज वगैरह की तालीम हो और उसमें अगर बुरे माहौल में जाना नहीं पड़ता तो ज़ाहिर है उसमें यानी तालीम का फ़ायदा जो है वो भी मिल जाएगा, और बुरे माहौल से भी इंसान बच जाता है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि दीनी तालीम बहरहाल बहुत मुकद्दम है इस दुनियावी तालीम के मुकाबले में। वो एक नफ़ा है जो उनके लिए, उनके ज़िंदगी में, उनकी औलाद, उनकी नस्लों की ज़िंदगी के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर हम दुनियावी तालीम दिलाते हैं, अगर आगे जाकर काम किया तो फ़ायदा होगा, और काम नहीं करना तो मेहनत का कोई ख़ास फ़ायदा भी ज़ाहिर नहीं होता। बहरहाल हर एक के अपने हालात होते हैं, उसके लिहाज से वो ख़ुद तय कर लें। सवाल यह है कि कोई नमाज में 3 सजदे कर ले तो नमाज का क्या हुक्म है? 3 सजदे गलती से कर लिए तो आखिर में सजदे सहू कर ले, सजदे सहू का जो भी तरीक़ा है सजदे सहू कर ले, नमाज हो जाएगी। आज तो इंशाल्लाह हमारे उसी वक्त पे रात को हम 7:45 बजे 7:45 पे इंशाल्लाह जमा होंगे। आइंदा हफ्ते से हमें चूँकि घड़ी बदलने वाली है हमारे इलाके में, तो इसलिए यानी मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो दूसरी और मुल्क से हों तो वो इस इलाके से मुतालिक नहीं होंगे। बहरहाल शाम को इंशाल्लाह, रात को दुआ के वक्त इंशाल्लाह, जो आइंदा से जो अवकात होंगे उसकी इंशाल्लाह फिर उस वक्त इंशाल्लाह उसका तज़किरा कर लेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक।